आज नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव है। जब भगवान का गुणगान होता है तो भक्त प्रसन्न होते हैं, और जब भक्तों का गुणगान होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए आज से 3 दिन तक, अर्थात आज, कल और रविवार की सुबह प्रह्लाद महाराज के गुणों का वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है, सातवें स्कंद का चौथा अध्याय है, जिसमें प्रह्लाद महाराज के गुणों को दिया गया है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रह्लाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो उनमें से हम लोग चर्चा करेंगे। जितने गुण हो सकेंगे इन 3 दिनों में उनको चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 30। इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आतंक। कृपया श्लोक दोहराइए। तस्य दैत्यपतेः पुत्रा चत्वारः परमद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य दैत्यपतेः पुत्रा चत्वारः परमद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य दैत्यपतेः पुत्रा चत्वारः परमद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकाः। उस हिरण्यकश्यपु दैत्यपते, दैत्यों के राजा के पुत्राः, पुत्रगण चत्वारः, चार परम अद्भुताः, अत्यंत योग्य तथा अद्भुत प्रह्लादः, प्रह्लाद नामक अभूत था, महान सबसे बड़ा, तेषां उनमें से, गुणे हैं दिव्य गुणों के कारण, महत उपासकः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा हिरण्यकश्यपु के चार अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। तात्पर्य, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्तिमय निष्ठा है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पांचवा स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूजन के कारण हुई है। अतएव ऐसे शुद्ध भक्त में जो निष्काम होता है, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण आध्यात्म में प्रबुद्ध होता है, तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, यदि कोई भक्त नहीं है तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण हैं वे अर्थहीन होते हैं। यह वेदों का निर्णय है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो जैसे हम बता रहे थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, नरसिंहदेव की प्रसन्नता के लिए आज से प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक के आगे से कई श्लोकों में नारद मुनि प्रहलाद के गुणों का वर्णन करते हैं। तीन दिनों में सारे गुणों को कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि नारद मुनि भी गुणों को कहने के बाद कहते हैं कि ये तो बहुत थोड़े से हैं। प्रहलाद महाराज में असंख्य गुण हैं, लेकिन थोड़े बहुत उन्होंने कहे, तो जो थोड़े बहुत उन्होंने कहे उनमें से थोड़े बहुत हम कहने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग समझ सकें कि प्रह्लाद महाराज की जो भक्ति है, प्रह्लाद महाराज का गुणगान हर सभा में किया जाता है, भक्तों की सभा में, असुरों की सभा में, ऐसी कोई सभा नहीं है जहां प्रह्लाद महाराज का गुणगान ना हो। तो इसीलिए ऐसे गुणों को हम लोग भी सीखें, प्रयास करें अपने अंदर लाने का, जिससे हम भी भगवान के प्रिय हो सकें। प्रह्लाद के जो गुण थे वो उसे महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसे इस श्लोक में हम देख रहे हैं, चार पुत्र थे हिरण्यकश्यप को। आप में से किसी को पता है बाकी तीन पुत्रों के नाम क्या थे? कोई जानते हैं? नारद मुनि ने भी नहीं कहा। नारद मुनि ने चार पुत्र कहे लेकिन नाम केवल प्रह्लाद का लिया, बाकी का नाम नहीं लिया, कहीं पर नहीं है नाम। हो सकता है कहीं किसी पुराण में इत्यादि लिखा हो, लेकिन यहाँ नारद मुनि ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि बाकियों का गुणगान नहीं करना चाहते, नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो इसीलिए यहाँ चारों लेकिन अद्भुत पुत्र थे। देखिए श्लोक में ये नहीं कहा गया कि केवल प्रह्लाद अद्भुत पुत्र थे, ये कहा गया चत्वारो महान अद्भुतः। चारों पुत्र बड़े अद्भुत थे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु अद्भुत था। हिरण्यकश्यपु भौतिक दृष्टि से कोई समान व्यक्ति तो नहीं था। सामान्य व्यक्ति तो सारे देवताओं को अपने वश में नहीं कर सकता, इतनी कड़ी तपस्या नहीं कर सकता जितनी हिरण्यकश्यपु ने की। तो वो भी बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। तो अद्भुत व्यक्ति के तो पुत्र जो होंगे वो अद्भुत ही होंगे। इसीलिए कहा गया चारों बड़े अद्भुत थे। अद्भुत मतलब प्रह्लाद को छोड़कर जो बाकी थे दिखने में, प्रह्लाद भी दिखने में अच्छे थे, और अन्य भौतिक गुणों में बड़े अद्भुत थे, बड़े श्रेष्ठ थे। लेकिन उन सारों में नारद मुनि प्रह्लाद का गुणगान करते हैं कि वो सब तो अद्भुत थे लेकिन प्रह्लाद श्रेष्ठ थे। अर्थात नारद मुनि समझा रहे हैं कि व्यक्ति को श्रेष्ठ उसका भक्ति का गुण बनाता है। बाकी भौतिक गुण बहुत थे उनके अंदर, उन बाकी चारों में। नाम भी नहीं लिया नारद मुनि ने, देखिए कितना अपमान। कम से कम नाम तो लेकर कह सकते कि ये चार पुत्र थे, इनके ये नाम थे और एक इनमें से प्रह्लाद था। नाम भी नहीं लिया प्रह्लाद, सीधे प्रह्लाद की बात की। उनमें से जो प्रह्लाद था बड़ा श्रेष्ठ था। क्यों? महत उपासक, क्योंकि वो महत, महत मतलब भगवान के भक्त, उपासक उनकी उपासना करने वाला था, भगवान की भक्ति करने वाला था। उपासना शब्द के कई अर्थ होते हैं। जब हम उपासना कहते हैं तो एक अर्थ है पूजा इत्यादि करना, जैसे कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है, ऐसे ही शास्त्रों में एक उपासना कांड है। तो उपासना अर्थात आरती करना, पूजा करना इत्यादि। लेकिन उपासना का और एक अर्थ होता है उपासक, महद उपासक यहाँ कहा गया। महद उपासक मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनका उपासक था, उनकी पूजा करता था प्रह्लाद। लेकिन उपासना शब्द का और एक अर्थ होता है उपासन। आसन यानि बैठना, उप यानि निकट, तो निकट आसन लेना। तो उपासना शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि सदैव निकट रहना। तो महद उपासक शब्द का अर्थ ये भी है कि प्रह्लाद सदैव भक्तों के निकट रहते थे, भक्तों के संग में रहते थे। तो भक्तों के संग में रहने वाला व्यक्ति भी महद उपासक कहलाता है। तो उपासना केवल आरती पूजा करके नहीं की जाती है, उपासना कई तरह से की जाती है। एक आरती पूजा करके, जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद की रोज पूजा करते हैं, ये उपासना है। दूसरा तरीका उपासना का है निर्देशों का पालन करके, जो गुरु ने कहा, जो आचार्यों ने कहा, जो भक्तों ने कहा, अगर हम उनका पालन करते हैं तो ये उनकी उपासना है। तो एक उपासना वपु की होती है, एक उपासना वाणी की होती है। तो वाणी की उपासना का अर्थ है उनके निर्देशों का पालन करना, और वपु और वाणी की उपासना में वाणी उपासना श्रेष्ठ है। क्यों वाणी की उपासना श्रेष्ठ है? क्योंकि वपु गुरुदेव आचार्य बहुत थोड़े समय तक रहते हैं, ज्यादा समय तो नहीं रहते, और फिर हरेक को अवसर नहीं मिलता उनके वपु वपु अर्थात शरीर, उनके शरीर की सेवा का। लेकिन वाणी गुरु के जाने के बाद भी बनी रहती है। जैसे श्रील प्रभुपाद 1977 ईस्वी में उन्होंने इस धराधाम को त्याग दिया, लेकिन आज भी उनकी वाणी है और आगे आने वाले हजारों वर्षों तक ये वाणी बनी रहेगी, और इसकी उपासना हजारों लाखों करोड़ों लोग करेंगे आने वाले समय में। तो इसीलिए वाणी की उपासना श्रेष्ठ है वपु की उपासना से। तो एक उपासना होती है वपु की, एक उपासना होती है वाणी की, और तीसरी उपासना होती है संग की। जब हम भक्तों के निकट आसन लेते हैं, भगवान के निकट आसन लेते हैं, और भक्तों के निकट आसन लेने का क्या अर्थ है? ऐसे नहीं केवल बैठ जाना, वो तो ठीक है, लेकिन सही दृष्टि में उपासना उनके संग का पूर्ण लाभ लेना, उनके संग में भक्ति की क्रियाओं को करना, उनके संग में भगवान को जानने का प्रयास करना, उनके संग में कृष्ण कथा करना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये उपासना है। तो इसको महद उपासना कहते हैं, और प्रहलाद महाराज ऐसे महद उपासक थे जो सदैव भगवान के निकट रहते थे, भगवान के स्मरण के द्वारा, भगवान के नामोच्चारण के द्वारा, भगवान की कथाओं को बोलने के द्वारा। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान के निकट नहीं रहा जाता क्योंकि कोई भगवान को देख नहीं सकता, हम कैसे भगवान के निकट रहेंगे? अर्जुन तो भगवान के निकट रहा क्योंकि भगवान थे, अब हम कैसे भगवान के निकट रहें, कैसे उनकी उपासना करें? उनका स्मरण करके, सततम कीर्तयंतो माम, उनका कीर्तन करके। भगवान ने खुद भगवद गीता में उपाय दिए हैं उनके संग में रहने के लिए, क्योंकि उनके संग में रहने से भक्ति इतनी नहीं बढ़ती जितनी हम उनका स्मरण करके, श्रवण करके, उनका कीर्तन करके बढ़ा सकते हैं। ये खुद भगवान श्रीमद् भागवतम में 2 बार इस श्लोक को दोहराते हैं, शब्दशः उसी श्लोक को उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों को कहा और गोपियों को कहा, और क्या कहा? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण, मेरे साथ में रहकर भक्ति नहीं बढ़ती, तो साथ में रहने का अर्थ समझो। और क्या अर्थ है साथ में रहने का? श्रवणात्। जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भक्तों के विषय में सुनते हैं, ये उनके साथ में, ये उपासना है। दर्शनात्, जितना हम भगवान का दर्शन करते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, दर्शन करते समय हम भगवान के रूप का गुणगान करें, भगवान को धन्यवाद दें। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, और फिर उसको ध्यान में रखें, जो हमने सुना, जो हमने दर्शन किया, दिन भर उसका चिंतन करें। आज जब हम आज के दिवस पर भगवान के दर्शन करें, तो घर जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी सेवा में हो, स्मरण करें भगवान ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं, भगवान का रंग कौन सा है। आजकल तो चंदन यात्रा चल रही है, इसलिए रोज रंग बदल जाता है भगवान का, तो भगवान का रंग कौन सा है भगवान? अच्छा आप बताइए, नित्यानंद प्रभु का कौन सा रंग है? अभी सब देख रहे हैं, अभी दर्शन किया 1 घंटा पहले, अभी देख रहे हैं, तब देखने के बाद ध्यान में आएगा। तो भगवान का रंग कौन सा है, भगवान ने कैसे पगड़ी बांधी हुई है, पगड़ी के ऊपर कैसे फूल लगे हुए हैं, इन सब का स्मरण। तो दर्शनात् श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् और मई भावोनुकीर्तनात्, और फिर उस स्मरण को, उस दर्शन को जो आपने देखा है वो दूसरों को बताइए। भावपूर्ण कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो भगवान का नाम लेना और दूसरों को ये बताना, ये महद उपासना है, ये सच्ची उपासना है भगवान की। तो इसीलिए वपु की उपासना, वाणी की उपासना और फिर संग में रहने की उपासना। तो ऐसे हम सदैव भगवान के संग में रह पाएंगे अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे और उसको दूसरों को बताएंगे, सदैव भगवान का संग प्राप्त करेंगे। ये सच्ची उपासना है। तो प्रह्लाद महाराज ऐसे महद उपासक थे। आप लोग अब आने वाले 3 दिनों में जितने भी गुण कहे जा रहे हैं उनको गिनिएगा, तो 3 दिन के अंत में कितने गुण हो गए इसकी चर्चा करेंगे और फिर अगली बार कभी और प्रह्लाद महाराज के गुणों की चर्चा होगी। तो महद उपासक, ये पहला गुण उनका नारद मुनि बता रहे हैं कि वो महद उपासक थे। और एक बात महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि क्यों बाकी 3 का नाम नहीं लिया नारद मुनि ने, इसका एक कारण और है कि उनके पिता का गुणगान प्रह्लाद महाराज के नाम से होता है, बाकी किसी पुत्र के नाम से नहीं होता, कोई जानता भी नहीं है पुत्र को। प्रह्लाद के पिता थे हिरण्यकश्यपु। तो ऐसा कहा जाता है कि पुत्र को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पिता का गुणगान हो, या पिता से भी बढ़कर कार्य करना चाहिए। पिता ने 36,000 वर्ष तपस्या की, पुत्र ने 5 साल भक्ति की, पुत्र महान हो गया। तो पिता से ज्यादा बड़ा कार्य उसको करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पिता का गुणगान करना है तो महान कार्य करना चाहिए, तब तो पिता का गुणगान होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि जीसस का विषय वो कहते थे जीसस भगवान का पुत्र है, लेकिन वो सही पुत्र है क्योंकि उसने वो किया जो हर एक पुत्र को करना चाहिए, अपने पिता के नाम का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार। इसीलिए उनको परफेक्ट सन, उनको एकदम सही पूर्ण पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया। अर्थात पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता का गुणगान बढ़ाना। अगर प्रह्लाद नहीं प्रकट होते तो फिर हिरण्यकश्यपु का गुणगान कौन करता? तो इसीलिए हमें जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता का गुणगान नहीं होता, पुत्र का ज्यादा हो जाता है। जैसे एक स्थान पर कहा गया है कि अगस्त्य मुनि, इनका जन्म हुआ एक मटके से, अगस्त्य मुनि का जन्म एक मटके से हुआ, और मटके से जन्म लेने वाला समुद्र को पी जाता है। मटका उनके पिता है ना, मटके से जन्म हुआ, और पिता कितना लेते हैं जल? 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर। लेकिन पुत्र को देखो, जो जन्म हुआ मटके से लेकिन पी गया सारा समुद्र। नाम रोशन किया ना मटकों का उन्होंने, अगस्त्य मुनि ने। तो ऐसे, तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रह्लाद महाराज के कारण हिरण, जहां भी प्रह्लाद का नाम आता है हिरण्यकश्यपु का नाम आता है। हम नरसिंह देव का गुणगान करते हैं, नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लाद हलाद दाइने हिरण्यकश्यपु, उसका नाम आ ही जाता है। अब बताइए, भगवान का गुणगान करने में भी असुर का नाम लिया जा रहा है, क्यों? प्रह्लाद महाराज उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैंने जितना बनाया है, मैंने जितना किया है, आप सबको मुझसे ज्यादा करना चाहिए, उससे और अधिक करो। और फिर वो कहते थे, अगर उससे अधिक नहीं कर पाओ, कम से कम जो है उसको संभाल कर रखो। तो ऐसे, और हम सब भगवान की संतानें हैं, इसीलिए हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम भगवान के नाम को आगे बढ़ाएं। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण का नाम आगे बढ़े, ये सच्चे पुत्र का कार्य है। तो ऐसे पुत्र होना चाहिए। तो अब आगे के श्लोकों में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं नारद मुनि उनके और गुणों का। अभी तो कहा कि चारों में से एक श्रेष्ठ था, और क्यों श्रेष्ठ था? गुणों के आधार पर, अपने बाहरी लक्षणों के आधार पर श्रेष्ठ नहीं था। यहाँ वो कहते हैं इस श्लोक में कि वो गुणों की खान थे, गुणों के आधार पर श्रेष्ठ थे। तो कौन कौन से गुण थे, अब उसका वर्णन आगे वो प्रारंभ करते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, ब्राह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तम। और भी बहुत सारे गुणों का वर्णन करेंगे, हम प्रयास करेंगे आज थोड़े बहुत गुणों को कहने का। तो पहला गुण वो कहते हैं ब्राह्मण्य। उनका गुण क्या था? ब्राह्मण्य। वैसे इसके आगे के श्लोक में उन सारे जो ये गुणों का वर्णन कर देंगे, ब्राह्मण्य सत्य संध शील संपन्न इत्यादि, लेकिन उन गुणों का कारण क्या था इसका वर्णन नारद मुनि आगे के श्लोक में करते हैं। हम उसको पहले कहना चाहेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण गुण है जो नारद मुनि ने बाद में कहा। और वो गुण है, नारद मुनि कहते हैं, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। प्रहलाद महाराज में सारे गुण थे क्योंकि वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त थे। बहुत स्पष्ट कहा गया है वो कृष्ण के भक्त थे। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। नैसर्गिकी मतलब जिनको स्वाभाविक प्रेम था, रति मतलब प्रेम। तो प्रहलाद महाराज जिनको स्वाभाविक प्रेम था, जैसे साधारण मनुष्यों को भोग करने का स्वाभाविक रुचि होती है, स्वाभाविक रति होती है। एक बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि भोग कैसे करना है, है ना? ऐसे खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। जब लड़का जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो उसको बताया नहीं जाता कि देखो ऐसे एक युवती होती है, उसको देखना चाहिए, उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए, ऐसे बताया नहीं जाता है ना? आशा करते हैं आप सबको किसी ने ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, और आगे भी भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो। तो लेकिन वो स्वाभाविक है, उसका स्वाभाविक आकर्षण हो जाता। रामायण में हम पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति जिसने बचपन से कभी स्त्री को नहीं देखा था, ऋषि श्रृंगी जंगल में रहता था, पिता ने बड़ा संभाल के रखा था, कभी स्त्री को देखा ही नहीं युवा होने तक, लेकिन उसने भी जब स्त्रियों को देखा तो बड़ा आकर्षण हो गया। क्यों? स्वाभाविक है। उसको बताया नहीं था उसके पिता ने कि देखो ऐसे ऐसे स्त्रियां होंगी तब देखना जरा आकर्षण हो, कुछ नहीं। जिसने बचपन से नहीं देखा उसको आकर्षण हो गया। तो जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है भोगों के प्रति, आनंद लेने के प्रति, इस जगत में प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। उनको किसी ने सिखाया नहीं बचपन से, जन्म लेने के बाद कहाँ सिखाते। उनको तो सिखाया जा रहा था कि ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है, विष्णु सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन स्वाभाविक। उनको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन स्वाभाविक प्रेम था उनका। तो यस्य नैसर्गिकी रति ही, स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के प्रति उनका था। और प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणः सत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतः महत् गुणः। प्रभुपाद कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना। अकिंचना शब्द का होता है किंचन मतलब और कुछ, अकिंचन मतलब और कुछ नहीं, अकिंचन अर्थात जिसकी यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, जिसकी केवल भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है और किसी में नहीं, अकिंचन। कुंती महारानी कहती हैं, त्वाम अकिंचन गोचरा, आप ऐसे लोगों के स्वामी हैं जो अकिंचन हैं। तो अकिंचन मतलब गरीब नहीं, अकिंचन मतलब जो आपके अलावा और किसी को नहीं देखता, उसे अकिंचन कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा, उस व्यक्ति में अपने आप अच्छे गुण आ जाते हैं। इसीलिए लोग भक्तों से प्रेम करते हैं। ध्रुव महाराज की कथा हम लोग सुन रहे हैं। ध्रुव महाराज जब गए तो उनकी माँ ने उन्हें, जो उनकी सौतेली माँ थी सुरुचि, फेंक दिया, गोदी से उतार दिया, पिता ने कुछ नहीं कहा। और फिर जब वो चले गए तो सुनीति ने भी नहीं रोका, जा रहे हैं वन में, बाकी किसी नागरिक ने नहीं रोका। लेकिन जब वही ध्रुव महाराज वापस आए, कुछ भी बदला नहीं था, वही लोग थे, वही नागरिक थे, वही सुरुचि, वही सुनीति। लेकिन जब ध्रुव महाराज वापस आए, सबने बड़ा प्रेम दिखलाया। सुनीति ने, सुनीति का तो स्वाभाविक प्रेम था, लेकिन सुरुचि भी बार बार माथा चूमने लगी, आशीर्वाद देने लगी, बड़ा प्रेम करने लगी। अरे कितना समय हुआ था, 6 महीना। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सुरुचि, जिसने उठाकर फेंक दिया था जमीन पर कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, अधिकार नहीं है तुम्हें, वो माता चूम रही है, आशीर्वाद दे रही है, प्रेम के आंसू बहा रही है उसको देखकर ध्रुव को, 6 महीने में। तो क्या बदल गया, क्या सुरुचि बदल गई? और जो उत्तानपाद राजा, जिन्होंने जब उनकी गोद से फेंक दिया, सुरुचि ने तो चुप रहे, मना नहीं किया सुरुचि को, अरे ये भी मेरा पुत्र है, इसको भी अधिकार है, मना नहीं किया। वो उत्तानपाद भाग रहे हैं स्वागत करने के लिए, मेरा बेटा ध्रुव आ गया है, भाग कर गए, सजाओ, कहने लगे सारा शहर सजा दो, गलियां सजा दो, मेरा बेटा ध्रुव आया है। तो क्या हुआ ऐसे 6 महीने में? यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और उस भक्ति के द्वारा वो सबके प्रिय बन गए। तो भगवान के भक्त सबको प्रिय होते हैं, क्योंकि वो किसी से द्वेष नहीं करते, उनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के लिए कहा जाता है कि उनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया, अजात शत्रु, ऐसे भक्त होते हैं। और उन भक्तों से स्वाभाविक प्रेम होता है सभी का। सुरुचि जैसी द्वेष करने वाली स्त्री भी ध्रुव महाराज को प्रेम करने लगी उनकी भक्ति के कारण। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। तो ऐसे गुण प्रहलाद महाराज में हैं। तो प्रमुख गुण था वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही, स्वाभाविक प्रेम था उनका। इसलिए रूप गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा आकर्षण एक युवक और युवती को होता है, स्वाभाविक है, बड़ा तीव्र आकर्षण होता, इतना तीव्र कि व्यक्ति बाहरी चेतना भूल जाता है। एक कथा बताई जाती है कि जंगल में एक योगी बैठे ध्यान कर रहे हैं भगवान पर, और एक स्त्री वहां से चली आती है, और स्त्री को कुछ पता नहीं, कोई नहीं, किन्हीं विचारों में डूबी हुई है। चलते चलते वो वहाँ आ जाती है, अचानक उसको ठोकर लगती है, क्योंकि ये बैठे ध्यान कर रहे हैं, देखती नहीं है, ठोकर लगती है, गिर जाती है वो, ये भी गिर जाते हैं, स्वाभाविक है क्रोध आएगा। अरे कोई योगी बैठकर ध्यान कर रहे हैं जंगल में, आप आके उसको टक्कर मार दो। और उसके ऊपर इतनी दुष्टता कि वो खड़ी हुई और उठकर चली गई, सॉरी वगैरह, क्षमा कर दीजिए, कुछ नहीं, उठी और चल दी। अब इसको तो और गुस्सा आ गया, भाई चलो कभी कोई गलती हो गई, क्षमा भी मांग ले तो साधु है मना, लेकिन कुछ नहीं, चल दी। खैर बैठ गए, शाम का समय हुआ, वो फिर से वापस आ रही थी। अब तो उसने कहा इसको तो छोड़ूंगा नहीं, अगर पूछा नहीं तो फिर से धक्का मारेगी इस बार। तो उन्होंने रोका उसको, तो उसने प्रणाम किया, कहिए। तो उसने कहा क्या कहिए, अरे तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? तो उसने कहा क्या हो गया, थोड़ा बहुत आपको कुछ आदर देना लोगों को। उसने कहा मेरे से कोई गलती हुई है वो तो बताइए आप, मैंने क्या किया? उसने कहा क्या किया, ऐसे पूछ रही हो, अरे सुबह जब तुम यहां से जा रही थी मैं बेटा ध्यान कर रहा था भगवान का, तुमने मुझे टक्कर मार दी, गिर गई, तुम भी गिर गई, मैं भी गिर गई, मैं भी गिर गया, और तुमने मुझे क्षमा भी नहीं मांगी, इतनी तुम्हारे अंदर अहंकार है। तो लड़की कहने लगी, सुबह के समय हाँ मैं जा तो रही थी लेकिन मैंने आपको टक्कर मारी, मुझे ध्यान नहीं। अब तो और गुस्सा कह रहे ठीक है क्षमा नहीं मांग रही लेकिन याद ही नहीं बोल रही है, मुझे याद नहीं। तो उसने कहा नहीं। फिर वो कहने लगी कि आप क्या कर रहे थे, बोले मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए सुबह जब मैं जा रही थी तो मुझे अपने प्रियतम से मिलने का ध्यान था, मेरा पूरा ध्यान उसमें लगा था, तो मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ क्योंकि मैं केवल उनका चिंतन कर रही थी, इसलिए मैं आई, मैंने टक्कर मारी, मैं गिरी, ये सब मुझे ध्यान नहीं। लेकिन महाराज आप तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, आपको ये सब कैसे पता चला, आपका ध्यान कैसा था? अर्थात उसका ध्यान, भले वो अपने प्रियतम का ध्यान कर रही थी लेकिन वो इस योगी के ध्यान से तीव्र था क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चला, वो बस ध्यान में मग्न थी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसा आकर्षण एक युवक को युवती के प्रति होता है हे कृष्ण, वैसा आकर्षण मुझे आपके प्रति होना चाहिए, इसमें कुछ ध्यान नहीं रहे, केवल आपका स्मरण हो। तो ऐसा हमें ध्यान भगवान का करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी रति, ऐसा स्वाभाविक प्रेम, तो ये स्वाभाविक होता है, ऐसा स्वाभाविक प्रेम चाहिए। और वो स्वाभाविक प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, हम सब में वो स्वाभाविक प्रेम है, ऐसा मत सोचिए कि केवल प्रहलाद महाराज में था, हम सब में है, लेकिन इस समय हम उसे भूले हुए हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं उसको भी रूप गोस्वामी बताते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे एक ही जिह्वा दी है और केवल दो कान दिए हैं, करोड़ों जिह्वा होती और करोड़ों कान होते तब आपका गुणगान करने में आनंद आता और आपकी कथा सुनने में आनंद आता, इसे रुचि कहते हैं। ये रुचि है कृष्ण कथा की और कृष्ण का नाम लेने की। हमारे लिए तो एक ही जीव और दो कान भारी हो जाते हैं, है ना, हम भगवान से कहते क्यों दो कान दे दिए, एक कम होते, थोड़ा भागवतम क्लास एक घंटे की जगह आधे घंटे की होती, दो अभी दो कान है एक घंटे की होती है, तो हमारा तो ये भाव है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते दो दिए केवल, करोड़ों कान होने चाहिए, सुनता रहूं मैं आपकी कथा, और जिह्वा भी एक ही दे दी आपने, लाखों जिह्वा होती तो हर जिह्वा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे मैं आपके नाम को ले सकता, ये मंत्र कह सकता। ये महामंत्र हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, और जो उनका मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, ये हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है महामंत्र से। महामंत्र जो हम लेते हैं उससे हजार गुना शक्तिशाली है ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र। तो फिर प्रश्न आता है, फिर हम लोग महामंत्र क्यों जप करते हैं, है ना, फिर तो रोज बैठ के जय श्री कृष्ण चैतन्य ही करना चाहिए, फिर महामंत्र क्यों, जब प्रभुपाद खुद कह रहे हैं कि हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है तो महामंत्र क्यों जप कर रहे हैं। इसका उत्तर रूप गोस्वामी देते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं एक स्थान पर कि चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के कई नामों को लिया, लेकिन वो नाम उन्होंने लिया अपने आनंद के लिए। जैसे कभी कभी भाव विभोर हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि वो जोर जोर से गाने लगते थे, गोविंद दामोदर माधवेती, ये उनके मुख से निकलता था। तो बहुत सारे नामों को लिया उन्होंने कृष्ण के, लेकिन वो सारे नाम अपने आनंद के लिए। लेकिन जीवों को भगवान के नाम के रस में डुबाने के लिए हरे कृष्ण इति नाम कहा। रूप गोस्वामी कहते हैं उन्होंने हम सब के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया, इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, क्योंकि जिन चैतन्य महाप्रभु का मंत्र हजार गुना शक्तिशाली है उन्हीं का आदेश है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इसलिए ऐसे आकर्षण होना चाहिए। तो ऐसा आकर्षण स्वाभाविकी रति प्रहलाद महाराज को थी। अब आगे उनके गुणों का वर्णन। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधाय, तो ऐसे ब्रह्मण्य पहला गुण वो वर्णन करते हैं कि वो ब्रह्मण्य थे। ब्रह्मण्य ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, दो शब्द हो, दो अर्थ हो सकते हैं ब्रह्म शब्द के या ब्रह्मण्य। एक ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है भगवान, या ब्रह्म बहुत, जैसे ब्रह्म कभी कभी वेदों को भी कहा जाता है, उनको शब्द ब्रह्म कहते हैं। कहीं कहीं पर अन्न को ब्रह्म कहा जाता है, अन्न ब्रह्म कहते हैं। प्राण देने वाली चीजों को ब्रह्म कहते हैं, और भगवान को साधारणता ब्रह्म कह के संबोधित किया जाता है। परब्रह्म परम धामम परित्रम परमम भवान, तो वहां ब्रह्म कह के भगवान को संबोधित किया गया। और दूसरा अर्थ होता है माया। दो प्रकार के जीव हैं, एक वो जो ब्रह्म में आनंद लेते हैं, एक वो जो माया में आनंद लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज ब्रह्मण्य थे। ब्रह्मण्य मतलब जो ब्रह्म में आनंद लेते थे, भगवान में आनंद लेते थे, माया में आनंद नहीं लेते थे। हम सब माया में आनंद लेते हैं। तो ब्रह्मण्य का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लिया है, उसने इन सारी चीजों में से भगवान को चुना है। और दूसरी ओर वो व्यक्ति जो आवृत है माया से, उसने भगवान को छोड़कर बाकी सारी चीजों को चुना है। ये अंतर है। ब्रह्मण्य मतलब वो बाकी सारी चीजों को छोड़कर भगवान को चुनता है, और मायामय व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर बाकी सारी चीजों को चुनता है। ये अंतर है ब्रह्मण्य और मायामय में। इस जगत में जब हम रहते हैं मायामय, माया में पड़े हैं, अंधकार में, अज्ञान में, क्या ज्ञान है हमारा? हम सोचते हैं कि ये जो शरीर हमें मिल गया है, बस ये सबसे अच्छी चीज है, इससे हम प्रसन्न रहते हैं और इसी के लिए सारे कार्य, इसी के लिए भोग करते रहते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा बताई जाती है, चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है। कथा है कि एक व्यक्ति था जिसको शरीर में बड़ी बीमारी थी, और उसकी बड़ी सुंदर पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, पति की सेवा किया करती थी। लेकिन इस पति को इच्छा थी एक वेश्या के साथ संग करने की। बीमार था, देखिए क्या स्थिति होती है व्यक्ति की, बीमार है, कोढ़ था शायद उसको, पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इच्छा क्या हो रही है, एक वेश्या। लेकिन वो वेश्या पैसे बहुत लेती थी, बहुत प्रसिद्ध वेश्या थी, तो जा नहीं सकता था, तो दुखी रहने लगा। पत्नी इतनी पतिव्रता थी, उसने देखा पति बहुत दुखी है, पूछ लिया कि क्या कारण है, मैं तो आपकी अच्छे से सेवा कर रही हूँ, फिर भी आप दुखी हैं। तो पति ने कह दिया कि दरअसल मैं उस वेश्या के साथ संग करना चाहता और कर नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है उतना, इसीलिए दुखी हूँ। तो इतनी पतिव्रता स्त्री थी, तो इसने सोचा कि ठीक है, अगर मेरे पति की इच्छा है कि वो वेश्या के साथ संग करना चाहते हैं, तो वो वहाँ चली जाती, वेश्या के घर में जाकर साफ सफाई करती बिना उसको बताए। वेश्या का घर बड़ा साफ सुथरा रहता, नीचे आंगन साफ कर देती, उसकी सेवा करने लगी। क्या भाव होगा देखिए उस पत्नी का, जो केवल अपने पति की इस गलत इच्छा को भी, पति ने क्या, एक पत्नी के लिए बाकी कोई भी इच्छा अगर पति कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये इच्छा करे कि मैं कोई दूसरी स्त्री के साथ संग करना चाहता हूँ, ये तो एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुनने योग्य भी नहीं है। लेकिन उस स्त्री ने केवल इसलिए कि मेरे पति की इच्छा है और धन नहीं है, तो जाकर वहाँ सेवा करने लगी। तो कुछ दिन बीत गए, ये वेश्या देखा करती कि ये कौन है जो रोज आकर साफ कर देती है, सब कुछ साफ रहता है, घर पूरा साफ, आश्चर्य होता था, मैंने तो कहा नहीं किसी को। तो कई दिन होने के बाद वेश्या को लगा, अरे कौन है, तो एक दिन उसने देखा, बुलाया, फिर उस स्त्री को पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे आकर करती हो, कभी कुछ लेती भी नहीं हो, साधारणतः अगर कोई साफ सफाई करता हमारे यहाँ कचरा उठाने के लिए आते हैं, उनको महीने में कुछ देना पड़ता है, रिसीप्ट दे देते हैं, अच्छा काट के पैसा दे। तो उसने कहा कि अरे आप इतना करते हो, कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं, पूछ मिलते भी नहीं, मुझे पता भी नहीं आप कौन हो, आज पहली बार मैं आपको देख रही हूँ, तो क्यों ऐसा कर रहे हो, कुछ चाहिए आपको, क्या चाहिए आप बताइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय उस स्त्री ने, पतिव्रता स्त्री ने उस वेश्या से कहा कि मेरे पति हैं, बीमार हैं, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा आपका संग करने की है, मैं इसीलिए आपकी सेवा कर रही हूँ, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति के साथ संग कीजिए। देखिए कितना प्रेम होगा उस स्त्री को अपने पति से, जो ऐसी चीज कर सकती है। तो जब वेश्या ने सुना उसको तो एकदम धक्का लग गया कि कैसी स्त्री है, इतनी पतिव्रता स्त्री की अपने पति के लिए मुझसे ये मांग रही है। लोग तो झगड़ा करते हैं वेश्याओं से कि मेरे पति के सामने नहीं आना, और ये इतना। तो उसने कहा ठीक है आज रात को भेज देना उसको। तो उसको भेजा, तो वेश्या ने अच्छा भोजन बनाया उसके लिए, खिलाने के लिए उसको, और उसको अलग अलग बर्तनों में रखा, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन और स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन में रख दिया, अलग अलग तीनों में। और अब जब वो आए तो उसको कहा पहले स्टील के बर्तन से खाओ, उसने खाया, फिर कभी चांदी के बर्तन से खाओ, उसने उसमें खाया, फिर कभी सोने के बर्तन से खाओ, उसने उससे भी खाया। फिर उसने पूछा, तीनों एक ही चीज़ थी, तीनों में एक ही खीर डाली थी। तो फिर उसने पूछा कि आपको इसमें से अच्छा लगा या इसमें से या इसमें से। तो उसने कहा अरे बर्तन से क्या फर्क पड़ता है, अरे बर्तन सोने का हो, चांदी का हो या स्टील का हो, भोजन तो वही है, खाने की वस्तु तो वही है, तो चाहे हम चांदी के बर्तन में खाएं या सोने के बर्तन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है। तो वेश्या ने समझाया इसी तरह आपकी पत्नी और मेरी पत्नी, मुझमें एक ही अंतर है, वो अलग पदार्थ दिखता है, मैं अलग पदार्थ दिखते हैं। तो चाहे बर्तन चांदी का हो, सोने का हो या लोहे का हो, बात वही है। तो आप अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे क्यों संग करने का प्रयास कर रहे हैं, जब बात वही है, केवल बाहरी दृष्टि से अलग है, हो सकता है मैं बाहरी दृष्टि से उससे अच्छे दिखती हूं, बस इतना है। ये माया, हम लोग बाहरी चीजों से आकर्षित हैं, रूप से आकर्षित होते हैं, बाहरी दिखावे से आकर्षित होते हैं, इसीलिए तो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी चल रही है। कॉस्मेटिक समझते हैं आप लोग, वो जो माता लोग लीपा पोती करते हैं ना, वो पता नहीं चलता उनके चेहरे को कभी कभी देख करके यही है कि कोई और है। हाँ ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर शादियों में नहीं जाते हैं, शादियों में माता जियों के चेहरे बदल जाते हैं फिर अगले दिन वैसे ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन शादियों में तो इसको पता नहीं कितना वो लोग घंटों, इसीलिए सारा इतना बड़ा चल रहा है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं करोड़ों के, धोखा देने के लिए। 6 महीने में आप सुंदर हो जाओगे, अरे क्या सुंदर हो जाए, भगवान ने सुंदरता दी नहीं तो क्या सुंदर हो जाओ बताइए। तो ऐसे अगर बनाना ही है हमको, ऐसे कहना है 6 महीने में, तो पकड़ के लाना चाहिए किसी को ऐसे जो एकदम कुरूप काली टेढ़ा मेढ़ा मुंह है, उसको लाके बोल बनाओ 6 महीने में सुंदर इसको, ये सब धोखा है, कोई सुंदर नहीं बन, जो है वो है, भगवान ने जो दे दिया वो दे दिया, क्यों सुंदर होना है हमें। लोग गोरेपन की क्रीम बहुत लगाते हैं कि हमें गोरा होना है, और पूजा काले की करते हैं, बताइए हमारे भगवान तो काले हैं ना, गोरे हैं क्या, काले हैं, तो फिर हमें गोरा होने की क्या आवश्यकता। तो ऐसी सारी ये बाहरी चीजें कि हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर पर है, जीवन भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मरने तक हम शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर की आवश्यकताएं, शरीर का सौंदर्य, शरीर को भोजन इत्यादि, लेकिन कभी ब्रह्मण्य आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते, उस वस्तु की ओर ध्यान नहीं देते जो इस शरीर को चला रही है, जो इस शरीर को सुंदर बना रही है। एक बहुत सुंदर भी अगर स्त्री हो मर जाए तो कौन उसकी ओर आकर्षित होता है? स्वाभाविक है, अगर कोई सुंदर स्त्री मर गई है लोग देखना नहीं चाहते। हम एक बार उदाहरण दिया करते थे, पहले कहीं किसी ने बताया था कि गुजरात में कॉलेज के बाहर दो लड़कियां खड़ी थी, बड़ी सुंदर थी और लोग देख रहे हैं। कॉलेज में तो लोग यही सब करते हैं। तो अचानक वो बाहर निकली और उधर से ट्रक आया और ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर दोनों मर गई। और बता रहे उस समय कोई देखना नहीं चाहता था उनको, सब मुंह घुमा रहे हैं। वही जिनको 10 मिनट पहले घूर घूर कर देख रहे थे, कोई देखना नहीं चाहता उनकी तरफ। क्यों? क्या हुआ? आत्मा चली गई। इसीलिए ये जानिए कि इस शरीर को सुंदर ये शरीर नहीं बनाता, ये चमड़ी नहीं बनाती है। चमड़ी बनाती होती तो फिर मरे व्यक्ति बड़े सुंदर लगते हम लोगों को लेकिन हम तो देखना डर लगता है, सुंदर तो छोड़ो। वही व्यक्ति जो आपके साथ 30 साल 40 साल रहा, जब मर जाता है तो रात में उसके साथ बैठने में डर लगता है ना? क्यों लगता है डर? सच में डर लगता है, लोग रहते नहीं है, अकेले नहीं रहोगे? अरे जीवन भर अकेले रहे उसके साथ, अभी अकेले नहीं रहेंगे, क्यों? डर लगता। आत्मा चली गई, शरीर की कोई वैल्यू नहीं, जल्दी जला दो, खत्म करो उसको, बदबू आने लगती है। इसीलिए ब्रह्मण्य आत्मा को देखना प्रयास। तो जो कथा हमने बताई, जो व्यक्ति आसक्त था वेश्या से, ये कथा हम सब की है। भले हम सब वेश्या से आसक्त ना हो लेकिन हम बाहरी चीज़ों से आसक्त हैं, धन से आसक्त हैं, सौंदर्य से आसक्त हैं, कोई किसी को थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाती है हम उससे आसक्त हैं। हमें आसक्त होना चाहिए भगवान से, ब्रह्मण्य। ये सही दृष्टि में हमारे लिए सुंदरता है। तो सुंदरता व्यक्ति की उसके आभूषणों से नहीं होती है। हाथ को सुंदर कंगन नहीं बनाते हैं, गले को सुंदर हार नहीं बनाता है। गले को सुंदर भगवान का गुणगान करने वाली वाणी बनाती है, वो गले की सुंदरता है। हाथों को सुंदर कंगन नहीं भगवान के मंदिर को साफ करने से बनते हैं वो। तो जो हाथ भगवान की सेवा करते हैं वो सुंदर हैं, जो गला भगवान का गुणगान करता है वो गले की सुंदरता है, जो मस्तक भगवान के सामने झुकता है वो मस्तक की सुंदरता है। अन्यथा क्या सुंदरता है? मस्तक पर मुकुट लगाकर कोई सुंदर नहीं बनता, मस्तक को भगवान के सामने झुकाकर सुंदरता होती है। तो इसीलिए जान लीजिए कि बाहरी सुंदरता है केवल, अगर हम आभूषणों से आसक्त होते हैं या आभूषणों से सुंदर होने का प्रयास करते हैं। सच्ची सुंदरता भगवान की भक्ति है। तो हाथों की सुंदरता है भगवान की सेवा, पैरों की सुंदरता है भगवान के मंदिर चलकर जाना, ये पैरों की सुंदरता। गले की सुंदरता भगवान का गुणगान, जिह्वा की सुंदरता। तो हमें ये सब बाहरी आभूषण नहीं चाहिए, ये सोने के आभूषण नहीं चाहिए, मल का, जैसे प्रभुपाद कहते थे सोने का रंग मल की तरह है, येलो स्टूल, पीला मल, और क्या है बताइए? लोग सोने से क्यों आकर्षित होते हैं? लोहे के क्यों नहीं पहनते? लोहे के गहने पहने, अभी पहनने लगेंगे, कलयुग आएगा आगे, चिंता नहीं। लोग लोहे के गहने पहले भी पहनते थे, थोड़ा बहुत महंगा है, लोगों ने महंगा कर दिया है उसको, बस तो सोना महंगा चलता है। वैसे है क्या सोने में? वो भी एक धातु है बस। तो इसीलिए सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, हीरे के आभूषण हमें सुंदर नहीं बनाते, हमें सुंदर बनाते हैं भगवान की भक्ति। वो व्यक्ति सुंदर है जो भगवान का भक्त है, इसीलिए ब्राह्मण्य। तो ये पहला गुण उनका कहा गया कि वो ब्राह्मण्य हैं। और इसीलिए जैसे हम बता रहे थे कि बाहरी चीज़ें, चाहे वो सौंदर्य हो, धन हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार एक पिता अपने बच्चे को, बड़ा अमीर व्यक्ति था, तो अपने बच्चे को एक गरीब की झोपड़ी में ले गया दिखाने के लिए। कि देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या गरीबी है, क्योंकि छोटा बच्चा कभी गरीबी देखी नहीं थी उसने, अमीर पैदा हुआ था, अमीर बड़ी चीज़ें देख रहा था, तो पिता ने सोचा इसको पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने अमीर हैं, तो ले गया दिखाने। बहुत थोड़ी देर वहाँ रहे, फिर वापस आने लगे, बच्चा बड़ा चुप था, तो पिता ने सोचा अभी इसको समझाना चाहिए, तो पिता ने पूछा कि पता चला तुम्हें, तुम्हें कुछ समझ में आया उनका घर देखकर? बोला हाँ मुझे समझ में आया। वो क्या समझ में आया? वो हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार कुत्ते हैं। हम घर में 10-12 बल्ब जलाते हैं, उनके इतने सारे तारे हैं, उनके पास पूरे तारे हैं। हमने घर की सुरक्षा के लिए दीवार बना रखी है, उनके पास उनके मित्र हैं सुरक्षा के लिए। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके घर के बाहर पूरी नदी बह रही है। तो लड़का कहने लग गया, आज मुझे पता चल गया हम लोग कितने गरीब हैं। है ना? तो सच्ची सच्ची दृष्टि में अमीर और गरीब व्यक्ति कौन है? अमीर वो है जिसके हृदय में भगवान है, जिसने भगवान को पकड़ रखा। बाकी चीज़ों को जो पकड़ा बड़ा गरीब व्यक्ति है, भगवान को जिसने छोड़ दिया। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग मनी धन से महान बनने का प्रयास नहीं करें, भगवान के गुणों से हम लोग महान बने। तो महानता और नीचता, इसका प्रमाण, इसका आधार क्या है? जो व्यक्ति जितना कृष्ण के निकट है वो महान है, फिर वो कैसा भी हो, धन हो, गरीब हो। सुदामा, क्या था सुदामा के पास? हम लोग आज गुणगान करते हैं, उसका नाम कितने आदर से लेते हैं। था क्या उसके पास भौतिक दृष्टि से? पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं था, धन तो भूल ही जाइए। उसकी बीवी ने जब उसको फटकारा तो कहा, देखो जरा बच्चों को क्या हालत हो गई है, उनका पीठ और पेट एक हो गया है, मतलब इतने इतने पतले हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, जाकर कुछ मांगो अपने मित्र से। तो ऐसी अवस्था क्या था उसके पास? लेकिन गुणगान करने योग्य है सुदामा, क्यों? भगवान ने उसके चरण धोए, भगवान की मित्रता थी, हृदय में भगवान को देखने की लालसा थी। सुदामा कुछ मांगने नहीं गए थे भगवान से, ये गलत गलत लोग प्रस्तुत करते हैं कि सुदामा देखो गए, भगवान ने कितना दे दिया, हमें भी मांगना चाहिए। सुदामा ने मांगा ही नहीं, तो और गए भी नहीं थे मांगने। जब पहली बार उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ तुम्हारा मित्र, वो भी पत्नी ने अपने लिए नहीं, बच्चों को देखकर कहा कि देखो क्या हालत हो रही है, बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, और तुम्हारा मित्र तो राजा है, थोड़ा बहुत मांग लाओ, एक गाय वाय मांग लाओ। तो तुरंत सुदामा के मन में आया, मांगना तो नहीं है, अरे कृष्ण से मैं कैसे मांग सकता हूं। लेकिन फिर उनके मन में आया, जाऊंगा लेकिन, क्यों? कम से कम दर्शन तो होंगे, मित्र से मिलाऊंगा इसी बहाने। इसीलिए सुदामा आए, और भगवान बार बार पूछ रहे हैं, सुदामा और कहो, कुछ कहो, कैसे हैं सब घर? सुदामा सब बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, आपको देख लिया अभी क्या तकलीफ है। बहुत बार पूछा भगवान, भगवान तो जानते थे, ऐसा तो नहीं है कि भगवान नहीं जानते थे, तो परीक्षा ले रहे थे, और कहो और कुछ, कि कभी सुदामा कह दे कि दरअसल बाप इतना पूछ ही रहे, मैं मांगना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा बहुत धन दे दीजिए, एक दो गाय दे दी। कुछ नहीं सुदामा ने, वो मांगने गए ही नहीं थे, वो देने गए थे भगवान को। देखिए सुदामा जैसा व्यक्ति भी, जिसके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, बीवी पत्नी पास वालों से पड़ोसियों से कुछ मांग कर लेकर आई, जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण के पास जा रहा हूँ, कुछ लेकर जाना है, तो फिर वो कुछ मांग कर लेकर आई। अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन है, जगह के हिसाब से वर्णन बदल जाता है। उत्तर भारत में कहते हैं सत्तू लेकर गए थे, और यहाँ कहते हैं पोहे लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ लोग पोहे खाते हैं, वहाँ सत्तू खाते हैं लोग, तो जो खाते हैं वो बोल दिया ले जाए। तो खैर जो भी ले गए थे, कुछ तो ले गए थे। तो भगवान को देने गए थे उस अवस्था में भी, वो पोहे या वो सत्तू देने गए थे, मांगने नहीं गए थे। ये भगवान ने गुण देखा सुदामा का, कि ऐसी अवस्था में भी मुझे देने आया है, मुझसे मांगने नहीं आया। ये भक्ति है, ये प्रेम है। तो हमें कृष्ण के पास मांगने नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे इसलिए बाहरी चीजों से हमें प्रभावित, तो महानता और नीचता ये बाहरी लक्षणों से नहीं होती, धन से, सौंदर्य से या प्रसिद्धि से। महानता और नीचता इतनी है, जो जितना कृष्ण के निकट है वो महान है, और जो कृष्ण से दूर है, बड़े बड़े भाषण देता है, कृष्ण को नकार देता है, वो नीच व्यक्ति है। हमें कोई ऐसे व्यक्तियों को नीच कहने में कोई तकलीफ नहीं है। जो व्यक्ति भले ही भौतिक दृष्टि से बड़े प्रसिद्ध नेता हों, हजारों लोग उनके आगे पीछे भागते हों, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान को नकारते हैं, भगवान का गुणगान नहीं करते, नीच व्यक्ति है। महान व्यक्ति केवल वो है, भले भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं हो, भिखारी हो सुदामा की तरह, लेकिन हृदय में भगवान को देने के लिए भाव। और अगर हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को, हमारे पास कुछ नहीं है, सुदामा के पास कुछ नहीं था, प्रभुपाद लिखते हैं, अरे कैसे कोई कह सकता है कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या ये भी नहीं है आपके पास भगवान को देने के लिए? और वो भी नहीं है तो कारोबार में पद्धति है, दूसरे के घर से फूल तोड़ लो, लेकिन कम से कम दो भगवान। ये पद्धति पता नहीं कैसे यहाँ पर ये नियम है कि हम देखते हैं सुबह सुबह जब वॉकिंग करते हैं लोग, तो दूसरे के घर से वो बैग लेके जाते हैं कि दूसरे के घर से फूल तोड़ कर लाएंगे। हाँ तो क्षमा चाहते हैं, ये रिकॉर्डिंग कट कर देना, नहीं तो कारोबार वाले बहुत गुस्सा करेंगे। तो कुछ तो प्रभुपाद कहते हैं इसमें क्या तकलीफ है, एक पत्ता नहीं दे सकते भगवान को, एक फूल नहीं दे सकते, भाव चाहिए। तो इसलिए बाहरी दृष्टि से नहीं, हृदय से भगवान को पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ होता है ब्रह्मण्य। तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाता है वो ब्राह्मण्य है, और ये गुण था प्रहलाद महाराज का। तो अभी ये कितने गुण हुए? ब्राह्मण्य। इसके पहले महद उपासक, भक्तों के उपासक हैं वो, तो दो गुण हो गए। बहुत से गुण हैं, पता नहीं तीन दिन में कितने गुणों का वर्णन हो पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।